नमस्कार देश की बात में हाजिर है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तीसरी बार पदभार संभालते ही अपने कार्यालय के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये प्रयास रहा है कि पीएमओ सेवा का अधिष्ठान और पीपल्स पीएमओ बने। उन सबको मेरा निमंत्रण, जो विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए समर्पित भाव से कार्य करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने पहला फैसला किसानों के हित में लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की।
जिस टीम ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है उसको स्वाभाविक मन करेगा कि यार कुछ अब बहुत हो गया, अब साहब थोड़ा शांति रखे तो अच्छा होगा। ये रोज नई नई चीजें लेके आते हैं, लेकिन मैं मानता हूं अब मेरा दायित्व भी 10 साल मैंने जो सोचा है उसे ज्यादा सोचने का है, 10 साल जो किया है उसे ज्यादा करने का है। और अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। कल क्या थे और आज कितना अच्छा किया, वो वक्त चला गया दोस्तों। पहले 5 पर थे, अब 10 पर पहुंच गए, वो वक्त पूरा हो चुका है। अब दुनिया इस इलाके विषय पर यहां पर है और ये इससे आगे कुछ नहीं है तो उसके आगे हम होंगे। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। और व्यक्ति के जीवन में हो, समूह का जीवन हो या राष्ट्र का जीवन हो, जब तक वो बड़े संकल्प के साथ सोचता नहीं है परिणाम नहीं मिलता है।
और केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिन लोगों को लिया उनके पास जानकारी आपको देंगे, लेकिन पहले हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, आज जो प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कार्यालय के लोगों को संबोधित किया है, कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं, क्या कुछ खास रहा इसमें?
ये काफी महत्वपूर्ण संवाद था। पीएम नरेंद्र मोदी का अपना कार्यभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सबसे उनकी लंबी बातचीत हुई। आपने देखा होगा वो तस्वीरें, जब सुबह आज वो गए हैं साउथ ब्लॉक में अपने ऑफिस में, तो कॉरिडोर में दोनों तरफ खड़े होकर सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने ताली बजाकर पीएम मोदी का अपनी तीसरी पारी के लिए स्वागत किया। और पीएम मोदी ने इसी बात का जिक्र अपने इस संवाद में भी किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में इस प्रधानमंत्री कार्यालय के सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, देश की सेवा की है, और यही कारण है कि सरकार ने इतना अच्छा काम किया कि लोगों ने एक बार फिर अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया नाम लिए बिना कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त किस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पावर सेंटर के तौर पर देखा जाता था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में उन्होंने ये कहा है कि पीएमओ जो है वो जनता की सेवा के लिए पीपुल्स पीएमओ बनकर के उभरा है। उन्होंने कहा ये मोदी का पीएमओ नहीं है बल्कि ये देश की सेवा करने के लिए एक केंद्र है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये सरकार जो है ना तो दाएं देखती है, ना बाएं देखती है, ना ऊपर देखती है, ना नीचे देखती है, ये सामने सीधे देखती है, बिकॉज क्लियरिटी ऑफ थॉट्स, ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने ये भी कहा, आह्वान किया है कि जितना काम अभी किया है उससे भी कहीं 2 गुना 4 गुना काम आने वाले 5 वर्षों में करना है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानदंड बनाए गए हैं हमें उनसे भी ऊपर जाना है। तो एक तरह से जितने अधिकारी कर्मचारी हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के, सबको उन्होंने सीख दी है। उन्होंने ये कहा कि आप अपने भीतर का विद्यार्थी हमेशा जीवित रखें तो ये आप जो है हर तरह की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझसे कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या आपके अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है, ये सवाल का जवाब देते देते मैं थक गया हूँ, लेकिन इसका सीधा जवाब यही कि शरीर से व्यक्ति जो है वो ऊर्जा नहीं प्राप्त करता है बल्कि सपने देखने से, मन के अंदर विद्यार्थी को जिंदा रखने से ऊर्जा प्राप्त करता है।
बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश, लेकिन नज़र तो इसी बात पर रहेगी कि कैबिनेट पोर्टफोलियो जो है उनका अनाउंसमेंट कब हो, उसके बारे में आप से आगे बातचीत करते रहेंगे। जैसे ही जानकारी मिलेगी अखिलेश के पास फिर जाएंगे। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिन लोगों को लिया गया है उनमें से एक भगीरथ चौधरी हमारे साथ हैं, अजमेर से सांसद हैं, पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। 2019 में भी लोकसभा चुनाव जीता था, राजस्थान किशनगढ़ विधानसभा के 2 बार के चुनाव जीते हैं, 2003 से 2008 और 2013 से 2018 तक। और बहुत बहुत धन्यवाद भागीरथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, एनडीटीवी इंडिया को समय देने के लिए। पहले तो आपको बधाई, और आप पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। राजस्थान के अजमेर के लिए क्या सबसे पहले आप करेंगे?
देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने तीसरी बार 1962 के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की कल शपथ ग्रहण करी थी। मैं कह सकता हूं कि ये देश के प्रधानमंत्री तो ही हैं, परंतु दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जिन्होंने गरीब को गणेश मानकर 10 साल में काम किया है। उसकी प्रशंसा देश में नहीं पूरी दुनिया में हो रही है, और चाहे शौचालय की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे जनधन खाते के तहत करोड़ों माताओं बहनों के खाते खोलने की बात हो, चाहे किसानों के किसान सम्मान निधि के तहत करोड़ों किसानों को किसान सम्मान निधि देने की बात हो, धारा 370-35 से हटाने की बात हो, नागरिकता संशोधन बिल लागू करने की बात तो पास करने की बात हो, चाहे 3 तलाक का अभिशाप मिटाने की बात हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य मंदिर जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होकर आज हम सबके लिए गौरव की बात हो। इतना ही नहीं, वैश्विक महामारी आ गई कोरोना काल में, 80 करोड़ से ज्यादा जनता को 4 साल से फ्री अनाज देने की बात हो, मोदी जी का विजन ही है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के आधार पे जो 10 साल में काम किया है। वास्तव में आपको पता है जो आर्थिक रूप से 2014 के पहले 11वें पायदान पे था देश, आज 500 पायदान पे खड़ा है। तो इसलिए मोदी जी का विजन है विकसित भारत बनाने का। मैं कह सकता हूँ कि ये तीसरी जो एनडीए की सरकार जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल शपथ ली है, ये 5 साल इस देश के लिए गौरवशाली होंगे। विकास की दृष्टि से ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, और ये देश जो आज 5वें पायदान पे, वो दिन दूर नहीं जो 3रे पायदान पे आर्थिक रूप से ये देश पंक्ति में आएगा।
जी, आपका विजन जानना चाह रहे थे, प्रधानमंत्री का विजन जानते हैं अजमेर के बारे में। बहरहाल, अगर राजनीति की बात करें, राजस्थान की राजनीति में जाट नाखुश बताए गए जो नतीजा है, लेकिन आप चुनाव जीत गए, कैसे हुआ?
देखिए निधि जी, झूठ तेजी से फैलती है और सत्य उसमें समय लगता है, और आखिर सत्य की विजय होती है। विपक्ष वालों ने एक झूठ भ्रम फैलाया आम जनता में। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि आरक्षण को SC ST OBC के आरक्षण को खत्म कर देंगे और संविधान में संशोधन कर देंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने यह साफ कहा कि आरक्षण को हम कभी खत्म नहीं करेंगे। और प्रधानमंत्री जी तो इतने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं आरक्षण को कभी खत्म नहीं होने देंगे, परंतु विपक्ष ने झूठा प्रचार करके आम जन में ये भ्रम फैलाया कि अब की बार जो 400 पार का नारा लगा था, ये संविधान को संशोधन संविधान में परिवर्तन करेंगे और आरक्षण को SC ST OBC को खत्म करेंगे, वो आम जनता में उन्होंने भ्रम फैलाया। हमारी ये कमी रही कि कहीं न कहीं हमारी कमजोरी रही कि उस भ्रम को हम दूर नहीं कर पाए। और दूसरा, उन्होंने 1 लाख की गारंटी पत्र दिया उन्होंने। निधि जी, आप ही समझते हो और आपको पता है कि इस देश में 145 करोड़ की जनता है, 70 करोड़ मातृ शक्ति है, महिलाएं हैं, हमारी बहन बेटी है, हमारी माताएं बहन है। आप 70 करोड़ को 1 लाख से गुणा करिए, कितनी राशि बनती है, हमारे देश की GDP नहीं है इतनी। तो इस तरह के झूठ फैलाया। दूसरा, उन्होंने जातिवादी जहर फैलाकर उन्होंने इस तरह का एक किया, इसलिए हमारी जो आशाएं थी, हमारे को जो उम्मीदें थी 2014 से और 2019 में 25 की 25 सीटें हम लेके आए थे, उसमें हमारी कहीं ना कहीं जी
जी भागीरथ जी, अजमेर में पानी की समस्या अहम है, उस दिशा में आप क्या खास करेंगे?
देखिए, सबसे ज्यादा कोई अजमेर लोकसभा क्षेत्र में समस्या तो वो पानी की है। पानी बहुत जरूरी है। मैं हम जब चुनाव में गए, आम जनता विशेष तौर से महिलाएं बार बार ये आवाज उठा रही थी, डिमांड कर रही थी कि हमें पीने का पानी चाहिए। दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार द्वारा 30,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार को देने के बावजूद भी, जिसमें 31 मार्च 2024 तक हर घर में नल और उसमें जल होना चाहिए था, 30,000 करोड़ रुपए देने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने
जी
वो काम पूरा
जी
31 मार्च 2024 तक हर घर में नल और उसमें जल होने चाहिए था, हमारी ये प्राथमिकता रहेगी। अब हमारे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, भजन लाल जी के नेतृत्व में सबसे पहला काम किया ERCP का, और मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें अजमेर लोकसभा क्षेत्र पूरा का पूरा उस ERCP में आ रहा है।
बिल्कुल, आपकी डबल इंजन सरकार है, उम्मीद है जल्द से जल्द अजमेर की स्थितियां बदलेंगी। अब एक धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से चलते हैं अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास। प्रधानमंत्री मोदी की पहली कैबिनेट में जो फैसला हुआ है, अखिलेश हमें बताएंगे। जी अखिलेश, क्या अपडेट?
खबर आ रही है, जो पहली कैबिनेट की मीटिंग थी आज नरेंद्र मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल संभालने के बाद, इसमें एक बड़ा फैसला किया गया है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में 3 करोड़ घर जो हैं वो PM आवास योजना के तहत उन्हें बनाने के लिए सरकार अपनी ओर से वित्तीय मदद देगी। ये एक बड़ा फैसला कैबिनेट की ओर से किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है शहरी तथा ग्रामीण, इसके तहत अभी तक 4.21 करोड़ घरों को जो है बनाने के लिए सरकार ने अपनी ओर से आर्थिक मदद दी है, और आने वाले 5 वर्षों में 3 करोड़ अन्य घर जो हैं उन्हें बनाने के लिए सरकार अपनी ओर से मदद देगी। ये जो घर बनाए जा रहे हैं इनमें तमाम तरह की सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही है, जिसमें कि टॉयलेट है घर में, साथ ही LPG कनेक्शन भी दिया जा रहा है, बिजली का कनेक्शन भी है, और साथ ही दूसरे जो पानी का कनेक्शन है वो भी इसके तहत दिया जा रहा है। तो ये वो सारे घर हैं जो देश में अलग अलग शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में लगातार उनका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, और इसको अब अगले 5 साल में बढ़ाने के लिए 3 करोड़ अन्य जो घर हैं वो बनाएंगे, इसके लिए एक बड़ा ये फैसला किया गया है। आज आपको बता दें कि जब से मोदी सरकार ने कार्यकाल संभाला है ये दूसरा बड़ा फैसला है। आज सुबह ही PM नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यालय जाकर सबसे पहले जो PM किसान निधि है उसके तहत 20,000 करोड़ रुपए की रकम करीब 9 करोड़ किसानों को खाते में सीधे पहुंचाने के लिए फाइल पर दस्तखत किए थे, और अब से कुछ ही देर पहले जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें ये आवास योजना को जो है एक्सटेंशन करने के लिए 3 करोड़ घर बनाने की मंजूरी दी गई है।
बिल्कुल अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसानों के बाद अब जिस तरह से 3 करोड़ से ज़्यादा नए घर बनेंगे आवास योजना के तहत, ये महत्वपूर्ण खबर आ रही है। कैबिनेट का फैसला हुआ, ये जानकारी हमारे सहयोगी हमें दे रहे हैं। अब दूसरी जो बड़ी खबर है जिस पर इंतज़ार नज़र बनी रहेगी कि पोर्टफोलियोज कौन से मंत्री को क्या मिल रहे हैं, जैसे ही जानकारी मिलेगी आप तक पहुँचेगी। और आइए रुख करते हैं अब जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकी हमले से लोग उबर ही रहे हैं। आतंकियों की इस कायराना हरकत की हर ओर निंदा हो रही है। इसमें 3 विदेशी आतंकियों के शामिल होने की आशंका है, जो हथियार इस्तेमाल किए उनमें से एक अमेरिका में बनी कार्बाइन है। कहा जा रहा है कि गड्ढे में गिरने से पहले ही बस को छलनी कर दिया गया था। आतंकियों ने बस पर फायरिंग की जिससे बस ने संतुलन खो दिया और वो खाई में गिरी। कल हुए हादसे में इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी और 33 लोग घायल हो गए थे। आज घायलों से मिलने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी गए थे और कहा कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। इलाके में सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं, साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया और घायलों को 50,000 मदद दी जाने की जानकारी दी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से यहाँ पर अब सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। आतंकियों, जो बताया जा रहा है 3 आतंकी हैं, उनको उनकी तलाश अभियान चल रहा है इस समय। और आइए एक ग्राउंड रिपोर्ट पहले देख लेते हैं, जो जांच जिस तरह से चल रही है उस पर।
केंद्र में मोदी सरकार के शपथ ग्रहण से ठीक पहले जम्मू के रियासी में तीर्थ यात्रियों की बस पर हुआ ये आतंकी हमला। हमले के बाद सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी कर आतंकवादियों की तलाश में जुटे हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक हमले के पीछे लश्कर से जुड़े टीआरएफ का हाथ बताया जा रहा है। सुरक्षा तंत्र को मिल रहे इनपुट्स के मुताबिक आतंकियों में लगभग 12 जिहादी हैं, जो जम्मू क्षेत्र में 2 या 3 के ग्रुप में रजौरी पुंछ के जंगलों के अंदर टोप ले रहे थे। इस आतंकवादी समूह में LOC के पार के कई पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं, जिन्होंने किसी सुरंग के जरिए नियंत्रण रेखा पार की। हालांकि अभी तक सुरक्षा बलों को वो सुरंग नहीं मिली है, लेकिन तलाशी अभियान जारी है।
हमारे पास कुछ लीड्स हैं, कुछ इनपुट्स हैं, जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। हमारी ऑपरेशनल टीम जो है, तकरीबन अभी तक जो हमने बनाई है 11 टीम जो है, वो अभी तक फील्ड पे काम कर रही हैं। 2 डिफरेंट टैक्सीज हैं जिन पे काम कर रही है, और जैसे जैसे हमारे पास इनपुट डेवलप होंगे वैसे वैसे हम उनको देखिए। मैंने पहले भी कहा कि ये प्रीमैच्योर होगा कहना कि कितने लोग और क्या लोग। हमारे पास कंटीन्यूअस इनपुट्स आ रहे हैं, कंटीन्यूअस लीड्स आ रही हैं, उसकी बेसिस पे जो भी इन्वेस्टिगेशन में हमें रिक्वायरमेंट है, जो भी हमें डिटेंशन या जो हमारे अरेस्ट करनी पड़ेगी, वो हम जैसे जैसे होंगी फॉर्मलाइज हम आपको बताते हैं।
आतंकियों ने रविवार शाम करीब 6:15 बजे यात्रियों की इस बस को निशाना बनाया। फायरिंग से यात्रियों को बचाने के चक्कर में ड्राइवर बस का नियंत्रण खो बैठा और बस गहरी खाई में जा गिरी। बस में 42 तीर्थ यात्री बैठे थे, जो शिव खोड़ी मंदिर से कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर जा रहे थे। इनमें से 3 महिलाएं समेत 9 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है और 33 अन्य घायल हो गए हैं।
हम यूपी से हैं, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से। हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में गए थे शिव खोड़ी दर्शन करने। दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई होगी, फिर एक पहाड़ से जब नीचे उतर रही थी तभी गोली चलने लगी थी। और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफी टाइम चला। जो रोड पे जब गाड़ी थी चल रही थी तो सामने सफारी।
मैं संत कबीर नगर यूपी से आया हूँ और शिवपौड़ी के दर्शन के लिए गया था, और दर्शन करके वापस हम लोग आ रहे थे। 2-3 किलोमीटर बस चली होगी, उसके बाद जो है सामने से हमारे फायर होने लगा, और तब से फायर चलता रहा और बस हमारी जो है थोड़ी सी आगे जाकर खाई में पलट गई। 5-6 राउंड गिरने के बाद एक बड़ा पत्थर में जो है बस फंस गया और रुक गया, और सभी लोग जो है छोटी लोग हैं उसमें, कोई पड़ा था बेसुध, कोई इधर, कोई बाहर, कोई बस में, और सभी लोगों को एकदम जो है चोट लगा हुआ था।
सुरक्षा फोर्सेस और इन्वेस्टिगेटर्स कल से इस जगह पे हैं, जो भी उनको कुछ भी शहादतें एविडेंस मिली उसको इकट्ठा कर रहे हैं, जिसमें कार्ट्रेजेस हैं, किस तरह का वेपन और हथियार इसमें इस्तेमाल किया गया है। माना जाता है 202 से 203 आतंकी इस हमले में मुलव्वस थे। ये बस शिवखोरी, जो एक गुफा है, एक केव टेम्पल है, वहां से आ रहे थे और यहां से फिर वो कटरा जा रहे थे, जो करीब 70 किलोमीटर यहां से दूर है। पुलिस और प्रशासन सभी लोग जुट गए राहत कार्य में। यहाँ J&K एडमिनिस्ट्रेशन और सुरक्षा फोर्स ने ये राहत कार्य के लिए वो हेल्पलाइन भी कायम की है।
हमले के तुरंत बाद सरकार ने कहा कि इस कायराना आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पिछले 5 सालों में रजौरी और पुंछ के इलाकों में सेना को काफी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। इस साल भी जून 29 से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, ऐसे में ये हमला प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी साबित हो सकता है। रियासी से अपने सहयोगी नजीर मसूदी के साथ, नई दिल्ली से मैं नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।
और आइए नजीर के पास ही चलते हैं, वहां से हाल जानते हैं। नजीर, जो ये इलाका है यहाँ पर आतंकी गतिविधियां भी हाल के दिनों में बढ़ी भी हैं, अब इस पूरे मामले पे क्या अपडेट आपके पास?
दरअसल ये वो कहते हैं ना, घिनौनी हरकत, जहां बेगुनाहों को मारा जाए, 2 साल का बच्चा भी उसमें कत्ल हो, उसको भी मारा जाए, तो हर एक दिल दहलाने वाला वाकया है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये जो इलाका कोई आसान इलाका नहीं, वहाँ कार्डन इंसर्च ऑपरेशन करे और जो आतंक है उनको पकड़ा जाए। बड़ा चैलेंज ये है, जब भी बड़े आतंकी हमले हुए, आर्मी पे हुआ, स्पेशल फोर्सेस पे हुआ या सिविलियंस पे हुआ, मिलिटेंट बाग निकलने में कामयाब हो। उसकी वजह ये है, ये गन्ने जंगलात में जहाँ भी हों, झाड़ियों के पीछे किसी को मालूम नहीं क्या हो सकता है, तो और जो नेचुरल केव्स हैं यहाँ, गार हैं, तो वहाँ छुपने की काफ़ी जगह इनको है। तो पूरा इलाका ये जंगल है, माउंटेन्स है, तो सबसे बड़ी चुनौती है कि कश्मीर घाटी के प्लेन्स से अब ये जो मिलिटेंसी का थिएटर है पीर पंचाल के पहाड़ों में शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ जो जंगल वारफेयर में जो माहिर आतंकी हैं पाकिस्तान से आ रहे हैं वो इसमें शामिल हैं, जो आर्मी ने पहले भी कहा कितने बैटल हार्डन हैं। और जब ये यात्रियों को मारें, इस तरह से मैं मारे, बेदर्दी से बेगुनाहों को मारें, तो उससे लग रहा है कि किस तरह जो बर्बरियत का दौर है, किस तरह ये शुरू हुआ है, बेगुनाह को इस तरह मारा जा रहा है। जैसा नीता रिपोर्ट में बता रही थी कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो उससे जो सिक्योरिटी सुरक्षा के कंसर्न और बढ़ गए हैं। कहा जाता है सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक 3 आतंकी थे, 3 फॉरेनर थे, अमेरिकन मेड M4 राइफल का इस्तेमाल किया गया, उसके कार्ट्रेज भी वहाँ से उठाए गए। टाइमिंग का बहुत ही अहम है कि टाइमिंग क्या है, और बस पे टारगेटेड अटैक था, ये नहीं था कि कोई वहाँ और गाड़ी नहीं चल रही थी, गाड़ियाँ चल रही थी इसी रोड पे, लेकिन उसी गाड़ी को टारगेट किया गया, तो जाहिर सी बात है टारगेटेड अटैक है। लोकल मिलिटेंट नहीं है, लेकिन लोकल सपोर्ट के बगैर इस तरह के हमले भी मुमकिन नहीं है। तो कुल मिला के एक तरह की एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो सुरक्षा फोर्सेस को डील करनी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि प्रधानमंत्री जाती तौर पे इस सिचुएशन की मॉनिटरिंग कर रही है, और जो भी इसमें मुलव्वस होगा वो उसको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। उनका ये भी कहना है कि ये जो हमला किया गया ये जम्मू में एक टर्मोइल फैलाने की कोशिश थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कम्युनल लाइन्स पे अटैक किया गया, क्योंकि वो हिंदू थे, यात्री थे, अटैक किया गया। तो और इससे पहले भी यहाँ डांगरी रजौरी में पिछले साल अटैक हुआ, तो एक बड़ा चैलेंज है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। लेकिन ये जो पहाड़ हैं, ये जंगल हैं, ये झाड़ियाँ हैं, ये एक नेचुरल केव्स हैं, सबसे बड़ा चैलेंज ये है, उसी से इनको शेल्टर मिलता है आतंकियों। और बड़ी बात यह है कि कब पाकिस्तान से घुसपैठ बंद होगी और इस तरह के अटैक बंद हो जाएंगे।
बिल्कुल नज़ीर, आपने जानकारी दी इतनी गहराई से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जांच में लगी है पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां। एक ब्रेक हम लेते हैं देश की बात में। और अब बात नीट प्रतियोगिता की। नीट में गड़बड़ियों के आरोपों की जांच के लिए बनाए गए कमेटी को लेकर ही सवाल उठने लगे हैं। जांच का जिम्मा जिस कमेटी को सौंपा गया है उसके प्रमुख NTA की गवर्निंग बॉडी के प्रमुख प्रदीप कुमार जोशी हैं। एतराज इस बात को लेकर है कि जिस संस्था पर आरोप है उसी के प्रमुख कैसे जांच कर सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना है परीक्षा पारदर्शी रही है और मामला सिर्फ 1600 छात्रों को लेकर ही है। आरोपों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सफाई जारी की। NTA ने 67 छात्रों को 720 नंबर मिलने पर उठे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 44 ने फिजिक्स के सवाल के 2 सही विकल्प चुने, इसी वजह से इन सभी को अंक कम समय मिलने पर 6 केंद्रों के छात्रों को पूरे ग्रेस मार्क नंबर दिए। इन 6 केंद्रों पर गलत पर्चा बटा, जांच में मामला सही पाया गया, तकरीबन 1600 छात्रों को ग्रेस नंबर दिए गए। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला।
देश की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल परीक्षा में से एक जो नीट की परीक्षा है उसको लेकर अब तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर इस नीट की परीक्षा पहले क्यों घोषित किया गया। दूसरा सवाल यह है कि 67 जो छात्र हैं उनके 720 नंबर हैं। तीसरा सवाल यह है कि जो 1600 छात्र हैं उनको ग्रेस मार्क कैसे दिया गया। चौथा सवाल यह है कि कई सारे लोग इस बात को लेकर सशंकित हैं कि परीक्षा के दौरान उनका आरोप है कि लीक हुए हैं पेपर। दूसरा आरोप है कि कई सारी जगहों पर डमी कैंडिडेट पकड़े गए हैं, यानी कुछ न कुछ परीक्षा प्रक्रिया में लूप होल है। लेकिन शनिवार को जो नीट के परीक्षा का जो आयोजन करवाते हैं एनटीए जो संस्था है उसके जो डीजी हैं सुबोध कुमार सिंह, वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने सबसे बात पहली ये कही कि 24 लाख इसमें बच्चे करीब बैठे हैं और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है, परीक्षा की प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी थी। दूसरी बात उन्होंने कही कि तमाम सारे शिकायतों को देखते हुए एक 4 सदस्यीय जो कमेटी है उसको गठित कर दिया गया है और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वो आगे निर्णय लेंगे कि इन 1600 जो छात्र हैं उनका दोबारा रिजल्ट निकालना है या नहीं। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि ये जो कमेटी है ये उन 6 परीक्षा केंद्रों पर जाएगी जिसकी सबसे ज्यादा जो शिकायत है जो दूसरे छात्र कर रहे हैं, उन परीक्षा केंद्रों पर जाएगी और पता करेगी कि क्या कोई गड़बड़ी हुई थी। दरअसल ये पूरा मामला एनटीए का ये कहना है कि 6 परीक्षा केंद्र जो हैं उनमें ये 6 परीक्षा केंद्र अलग अलग हैं, सूरत के हैं, राजस्थान के हैं, कुछ पूर्वोत्तर के हैं, तो इन 6 परीक्षा केंद्रों पर ये शिकायत आई कि गलत जो प्रश्न पत्र है वो बट गया। अब जब परीक्षा खत्म हुई तो छात्रों ने शिकायत की तो शिकायत में ये पाया गया कि हाँ इन 6 परीक्षा केंद्रों पर जहाँ पर 1600 बच्चे बैठे हुए थे, छात्र बैठे हुए थे परीक्षा देने के लिए, उनको ये गलत प्रश्न पत्र बट गया था। तो उसके आधार पर एक हाई कोर्ट की गाइडलाइन है, उसी आधार पर एनटीए का ये कहना है कि उसी आधार पर इन 1600 छात्रों को ग्रेस मार्क दिया गया और जब ग्रेस मार्क मिला तो उसमें से जो फिजिक्स का एक सवाल था जिसको विकल्प जो उसमें दिया हुआ था वो दोनों ही विकल्प सही थे, तो वो 67 जो छात्र हैं उन्होंने उसी उन दोनों विकल्पों में से एक को चुना था, तो इसी के वजह से उन 67 छात्रों के नंबर को लेकर तमाम सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि वो 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, इन 1600 छात्रों के मार्क्स को देखा जा रहा है, लेकिन ओवरऑल जो परीक्षा है वो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, उसमें पारदर्शिता बरती गई है। अब एक हफ्ते के बाद में जब रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि आखिर क्या कोई उस तरीके की गड़बड़ी थी या नहीं, लेकिन फिलहाल एनटीए ने किसी भी बड़े पैमाने पर किसी भी गड़बड़ी की आशंका को खारिज किया है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
जेईई एडवांस में इस बार कमाल हुआ है, पहली बार 98.6% अंकों के साथ किसी ने टॉप किया है। इस बार टॉप 10 की कट ऑफ भी 90% से ज्यादा रही है। टॉप करने वाले वेद लाहौटी हैं तो इंदौर के, लेकिन उन्होंने अपनी तैयारी कोटा से की है। आईटी दिल्ली जोन से परीक्षा देने वाले वेद लाहौटी को 360 में से 355 नंबर मिले। कुछ देर पहले हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल ने उनसे बातचीत की।
वेद, ढेर सारी मुबारकबाद, और पहले आप अपना एक प्रतिक्रिया दीजिए, जो रिजल्ट आया है उस पर क्या कहेंगे आप?
मैम, जैसा मेरा रिजल्ट आया है उससे मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे अलावा मेरे पेरेंट्स और टीचर्स भी बहुत खुश हैं, उन्हें मुझ पर बहुत गर्व है कि मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया है।
जी वेद, आपको सुनना चाहते हैं सभी, ये चाहते हैं सभी सुनना कि वेद लाहौटी ने किस तरीके से पढ़ाई की, क्या तरीका रहा, क्योंकि देखिए जितने मार्क्स आपने हासिल किए सिर्फ 5 नंबर कम आए, बाकी आपने पूरा टॉप किया है देश भर में, बहुत खुशी का पल ये है। आप अपना एक्सपीरियंस साझा कीजिए हमारे दर्शकों के साथ।
मैम, इस परीक्षा के लिए मैंने मतलब पिछले 2 सालों से कोटा में रहकर पढ़ाई की है, और जेईई एडवांस जैसी एग्जाम है उसी की तरह मैंने इसमें याद करने की बजाय थोड़ा कंसेप्ट समझने पर ज्यादा ध्यान दिया।
जी वेद, सवाल आपसे मेरा ये था जो कि बहुत से बच्चे भी जानना चाहते हैं जो अब आगे या तो प्लानिंग कर रहे हैं इस एग्जाम को क्रैक करने की या फिर अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, कितने घंटे की सेल्फ स्टडी जरूरी होती है अगर आप ऐसे कॉम्पिटिशन को क्रैक करने का सोच रहे हैं तो?
मैम, इसमें अगर क्लासेस को मिला दे तो कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ना तो जरूरी होता है, क्योंकि जेईई एग्जाम का सिलेबस बहुत बड़ा होता है और इसे पूरा करने के लिए हमें काफी समय इसके लिए इसको पढ़ने में देना होता है।
आप परिवार से बात करके कितना सपोर्ट मिलता है, आसपास दोस्तों से बात कर कितना सपोर्ट मिलता है, कितना मोटिवेशन, क्योंकि फैमिली का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब परिवार साथ है और पूरा सपोर्ट बच्चे को कर रहा है बिना प्रेशर के, तो वो कितना खास ऐसे में हो जाता है?
मैम, इस पूरी जर्नी में मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, इसमें मतलब मैं अपने पेरेंट्स से फोन पर कांटेक्ट में भी रहता था, मैं अक्सर उनसे फोन पर बात करता था। उन्होंने कभी भी मुझ पर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं डाला, कि मतलब कोई भी ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी मुझसे जिससे मुझ पर प्रेशर आए। और उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया और मेरा जोश को कभी ठंडा नहीं होने दिया।
वेद, मुझे एक बात बताइए। देखिए, जब आप ऐसी पढ़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे होते हैं, दिन रात घंटों घंटों की पढ़ाई आप कर रहे हैं, आसपास हर तरीके के छात्र होते हैं, तो कभी क्या आपके ग्रुप में कुछ ऐसे छात्र होते थे? क्योंकि देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल आजकल निकलकर सामने आ रहा है कि बच्चों पर प्रेशर कितना होता है, और उस प्रेशर के बीच में कुछ बच्चे उस प्रेशर को दरकिनार कर पढ़ाई में लगते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, कुछ उसमें हतोत्साहित हो जाते हैं। ऐसे भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते होंगे जो जिन पर ये प्रेशर होता होगा कि नहीं, घर से ये कहा जा रहा है कि ये रैंक आनी चाहिए, मैं इतना रैंक नहीं लेकर आ पाया हूं तो मैं परेशान हो गया हूं, ऐसा होता है?
नहीं, मैम, मेरे साथ या मेरे बैच के बच्चों के साथ ऐसा नहीं हुआ था। हमारी बैच में बहुत अच्छा माहौल रहा है इस पूरी तैयारी के दौरान, तो इसीलिए ऐसा कोई घटना या ऐसा कोई अनुभव नहीं रहा।
जी,
और इस समय की बड़ी खबर केंद्रीय कैबिनेट को लेकर आ रही है। पहला पोर्टफोलियो एक तरह से सामने है। सीधे चलते अपने सहयोगी विकास भदौरिया के पास। तो मैं आपको बता दूं, जो नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय एक बार फिर से दिया गया है, ये महत्वपूर्ण है। हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री होंगे, पहली बार दिल्ली के सांसद चुने गए हैं। विकास हमारे साथ जुड़ गए। जी विकास, तो पहला पोर्टफोलियो सामने आ गया है। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। विकास, नितिन गडकरी एक बार फिर से सड़क परिवहन मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, उनके दो एमओएस होंगे, तो ये पहला पोर्टफोलियो है जो सामने आया है आधिकारिक तौर पर।
या बिल्कुल, देखिए, नितिन गडकरी को फिर से सड़क और परिवहन मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय अमित शाह के पास ही रहेगा, राजनाथ सिंह वो रक्षा मंत्री ही रहेंगे, तो ये तीन बड़े मंत्रालय जो अब तक सामने आए, जो विभागों का बंटवारा किया गया है।
बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। गृह मंत्रालय को लेकर, तमाम मंत्रालयों को लेकर अटकलें लग रही थी, तो आप ये कह रहे हैं कि अमित शाह ही गृह मंत्री रहेंगे और राजनाथ सिंह जी रहेंगे रक्षा मंत्री।
या बिल्कुल, देखिए, तीन महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जिनकी जानकारी एनडीटीवी के पास है। इन तीनों मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है। जो सड़क और परिवहन मंत्रालय है उसमें नितिन गडकरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और दो राज्य मंत्री उनके साथ जोड़े गए हैं। उसमें अजय टमटा शामिल हैं जो कि उत्तराखंड से आते हैं, और उसके अलावा हर्ष मल्होत्रा जो कि दिल्ली से सांसद राज्य मंत्री बनाया गया। इसके अलावा गृह मंत्रालय अमित शाह के पास ही रहेगा और रक्षा मंत्रालय केंद्रीय मंत्री पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास ही रहेगा जो कि लखनऊ से सांसद हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त एनडीटीवी के पास है कि जो तीन मंत्रालय हैं जो प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों का बंटवारा किया उसमें से तीन की जानकारी एनडीटीवी के पास है, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सड़क और परिवहन मंत्रालय। तो ये कहा जा सकता है कि शुरुआत की जो तीन मंत्रालय हैं जो चार मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के बाद जो बैक टू बैक शपथ ली थी उसमें से तीन मंत्रालयों में कोई बदलाव नहीं किया गया।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लगातार आपके पास आते रहेंगे विकास। फिलहाल एक वक्त है एक छोटे से ब्रेक। और अब आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपने जवाब भेज सकते हैं। सवाल है कि क्या शेयर बाजार में तेजी जारी रहेगी? एक बार फिर से हम जो नए पोर्टफोलियोज हैं, कैबिनेट का जो स्वरूप है, उस पर जानकारी के लिए चलेंगे अपने सहयोगियों के पास। लेकिन जो पहले तीन बड़े मंत्रालय, चार मंत्रालय हैं, वो साफ हो गया। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे। उनको दो दो एमओएस इस बार मिल गए हैं, हर्ष मल्होत्रा जो दिल्ली से सांसद हैं जो चुने गए हैं, और साथ ही अजय टमटा जो कि अल्मोड़ा उत्तराखंड से सांसद चुने गए हैं, इस बार उनको एमओएस बनाया गया है। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विकास, तो गृहमंत्री अमित शाह गृहमंत्री बने रहेंगे, गृह मंत्रालय उनके पास ही रहेगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में।
या देखिए बिल्कुल लगातार दूसरा टर्म होगा जब अमित शाह के पास गृह मंत्रालय होगा। पिछली बार गृह मंत्री बनाया गया था तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया था, उनके मंत्रालय ने धारा 370 को हटाने का जम्मू कश्मीर से फैसला किया था। इस बार फिर से उनको गृह मंत्रालय उनके पास ही रहेगा और जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सब गृह मंत्रालय के दायरे में आती हैं, इंटरनल सिक्योरिटी देश की और इसके अलावा बाहर सिक्योरिटी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ये दोनों मंत्रालय जो है वो पूर्व मंत्रियों के पास ही रहेंगे, यानी कि गृह मंत्रालय अमित शाह के पास होगा और रक्षा मंत्रालय जो है वो राजनाथ सिंह के पास होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी और आउटर सिक्योरिटी दोनों के जो मंत्री हैं वो पिछली बार की तरह ही बने रहेंगे। इसके अलावा सड़क और परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी के पास रहेगा। आपको पता है कि पिछले 10 साल से लगातार सड़क और परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी के पास है और देश में सड़कों का जो बड़ा नेटवर्क खड़ा हुआ है 4 लेन से लेकर एक्सप्रेसवे हाईवे बनने तक का, वो उसका बड़ा क्रेडिट जो है नितिन गडकरी को जाता है। तो ये मंत्रालय उनके पास ही रखा गया है। इसके अलावा उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद जो कि इस बार कैबिनेट में राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है, उनको इस मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर इंडक्ट किया गया है। और इसके अतिरिक्त दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा को भी सड़क और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर इस विभाग की जिम्मेदारी उनको दी गई है।
बिल्कुल। और विकास, इंतजार है जो 72 मंत्रियों ने शपथ ली, किसको क्या मिला और फेहरिस्त कब तक आने की उम्मीद की जा सकती है?
देखिए NDTV के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है और जैसे जैसे जानकारी आएगी हम अपने दर्शकों के साथ जरूर साझा करेंगे। कुछ ही देर में बाकी और जानकारी भी NDTV के दर्शकों के लिए हम एक्सक्लूसिव जानकारी निकाल कर लाएंगे तो जरूर साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो इन 3 मंत्रालयों को लेकर है। थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन से बाकायदा इसका प्रेस रिलीज जारी होगा और प्रेस रिलीज के जरिए पूरे देश को हम बता पाएंगे कि जो 72 मंत्रियों ने कल 71 मंत्रियों ने शपथ ली है उसमें से किस किस के पास कौन सा मंत्रालय किसको किस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा रही है। फिलहाल जो सबसे बड़ी जानकारी NDTV के पास है, गृह मंत्रालय अमित शाह के पास ही रहेगा पिछली सरकार की तरह, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास और सड़क और परिवहन मंत्रालय वो नितिन गडकरी के पास ही रहेगा। नितिन गडकरी के साथ 2 और मंत्री, उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अजय टमटा को राज्य मंत्री के रूप में लगाया गया है और साथ ही साथ दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा को भी उनके साथ राज्य मंत्री के तौर पर लगाया गया है।
बहुत बहुत धन्यवाद विकास। और जिस तरह से जैसे जैसे ये पोर्टफोलियो के और मंत्रालयों के बारे में जानकारी आएगी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल धन्यवाद और बने रहिए NDTV इंडिया के साथ।